Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Yeyam prete vichikitsa manushye astitye ke naayam astiti jayke. To Nachiketa isi prashn ko lekar khada. Sushupti mein jo nahi marta, संभावना है कि वो मृत्यु में भी नहीं मरता हो, और जब कोई एक संभावना एक संदेह खड़ा होता है तब उस पर विचार किया जाता है, अर्थात किंचित ज्ञान किंचित अज्ञान, तब वहां पर विचार किया जाता है। महात्माओं ने जब ये प्रक्रिया समझाने गए अविद्या की अज्ञान की, तो उन्होंने समझाने के लिए दो विभाग किए, एक अज्ञान और दूसरा अध्यास। अध्यास माने कुछ और थोप देना, जहां जो वस्तु नहीं है वहां उस वस्तु को लाकर थोप देना। जैसे रस्सी, प्रकाश के कारण हम रस्सी को नहीं देख पाते तो उसमें सांप का आरोप कर देते हैं, तो नहीं देख पाते, इसको कहा अविद्या, और सांप का आरोप किया उसको कहा अध्यास। तो उन्होंने कहा आच्छादकत्व मात्रम अविद्या लक्षणम, ढक लेना ये अविद्या का लक्षण है। अज्ञान क्या है, उसने रस्सी को ढक लिया। आच्छादकत्व मात्र अविद्या लक्षणम, उसने ढक लिया। और विपरीत बुद्धि रूपत्वम अध्यास लक्षणम, और फिर विपरीत बुद्धि हो गई, रस्सी को सांप समझने लगे, रज्जु सर प्रकट रज्जु रस्सी, तो उसमें सांप प्रकट हो गया। और भी समझाने को अविद्या को मूला विद्या कहा और अध्यास को तूला विद्या कहा। इस पर बड़ा वेदांतों में शास्त्रार्थ चलता है, आपको तो केवल शब्द बता रहे हैं। कुछ एक एक पक्ष है, वो बोलते हैं कि एक ही अविद्या है, उसमें तुम मूला और तूला मत लगाओ। हाँ, और एक ही अविद्या है, क्योंकि प्रमाण हम लोग शंकराचार्य के भाष्य को मानते हैं, तो भगवान भाष्यकार तो वो तो दोनों को एक ही मानते हैं। जो भगवान शंकराचार्य ने जो अविद्या बताई, तो उन्होंने कहा एक ही वस्तु के विषय में अज्ञान और विपरीत ज्ञान दोनों एक ही वस्तु के विषय में है, अर्थात ब्रह्म के विषय में है, इसलिए एक ही बात है। अविद्या और अध्यास इसलिए एक है, तो इसको थोड़ा समझना पड़ता है, इस पर बात चर्चा विचार चलती है। तो आच्छादकत्व अविद्या और विपरीत बुद्धि अध्यास, ये दोनों कहा दोनों लक्षण वाली अविद्या है, दोनों को एक करके उन्होंने निरूपण किया। स्वयं अध्यासो अविद्या नामीति, यह अध्यास ही, इसी को ही अविद्या कहते हैं, ऐसे स्थान स्थान पर वर्णन किया। अब बताओ सुषुप्ति में दृष्टांत, आपके पास सुषुप्ति है, गहरी नींद, सुषुप्ति समझते हैं ना आप लोग, गहरी नींद। तो कहा सुषुप्ति में, गहरी नींद में जब बुद्धि ही नहीं है तो विपरीत बुद्धि कहां से होगी। सुषुप्ति में जब बुद्धि ही नहीं है वहां तो वो सो जाती है, तो उसमें ये विपरीत बुद्धि वाली जो बात है तो विपरीत कहां से होगी। इसलिए अध्यास और अविद्या को एक किया जाता है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूं, आत्मा का यह जो स्वरूप है वह सुषुप्ति में भी आवृत होता है, और इसलिए अविद्या वहां रहती, हम जान नहीं पाते हैं अपने आप को, तो अविद्या की निवृत्ति तो एक उपदेश से ही होगी। एक बात, तो जब तक भेद ज्ञान है तब तक यह जीव बना हुआ, जीवम अंतिका, और इसको वेद अर्थात जान लिया, आपके आपके जीवत्व की ग्रंथि का उच्छेद हो गया, क्योंकि अखंड एक रस, विज्ञान एक रस, उस चेतन को, उस आत्मा को आपने जान लिया, जिसका विचार इस प्रकार किया था कि उसमें पुट मत बनाओ, त्रिपुटी। अथवा वेदों की प्रक्रिया क्या है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये तीन पुट बनाए जाते हैं। तो आध्यात्मिक क्या है, का नेत्र है, अधिदैव क्या है, सूर्य है, और अधिभूत क्या है, ये जो नदी पहाड़ सब दिखते हैं, आकाश आदि वह है। तो सूर्य अनुग्राहक देवता है, वो अधिदैव है, और नेत्र आपके अध्यात्म है, आपको पूर्व पूर्व कर्मों के संस्कार से नेत्र मिले हुए हैं, और अधिभूत पुण्य के प्रभाव से मिले हुए, और फिर आप इस फैले हुए संसार को देखते हैं, वो क्या है, अधिभूत है। तो ये तीन में विभाजन जो किया गया ज्ञान का, तो कहा तीन में विभाजन मत करो। इसलिए दूसरी पंक्ति में कहते हैं ईशानम भूत भव्यस्य, बहुत जबरदस्त है। तो ईशानम भूत भव्यस्य, भूत और भविष्य का शासक रूप से जो जानता है, आपका आत्मा ही भूत भविष्य का शासक है, अर्थात ईश्वर चैतन्य और जीव चैतन्य। पहली पंक्ति में जीवमंतिकात, आत्मानम जीवमंतिकात, जीव बताया, और दूसरी पंक्ति में ईशानम बताकर ईश्वर को लाके खड़ा कर दिया। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपसे कहीं पृथक नहीं है, वो पृथक नहीं है। एक बार श्री महाराज जी से किसी ने, वृंदावन की बात है, किसी ने प्रश्न पूछा कि आप महाराज जी ये कहते रहते हैं, सरल करके आपको सुनाते हैं, क्योंकि महाराज जी तो उत्तर सरल ही देते थे। तो कहा कि आप कहते हैं कि ईश्वर अभी है, यही है, यही है, जैसे इसमें कह रहे हैं ए तद वै तद। महाराज जी ने कहा हम तो उपनिषद की भाषा बोलते हैं, तो आप इस प्रकार से कहते हैं तो हमें इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती कि हम सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर देखें। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पहले अपने अंदर देखेंगे तब तो बाहर देखेंगे, अपने अंदर जो होता वही हम बाहर देखते हैं। वो कवि लोग जब वियोग की कविता करते हैं तो बोलते हैं कि वो जो नायक है वह दुखी है, पात्र जब दुखी है तो वो सब पूरी प्रकृति का वर्णन दुखमय कर देगा, करते हैं। और ये चंद्रमा, ये अमृत नहीं गिरा रहा, ये तो आग झर रही है इसमें से, ऐसे वर्णन करते हैं। तो इसमें से तो आग झरती है, और लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं कि बड़ी ऊंची भूमिका के कवि हैं, क्या वियोग का वर्णन किया है। तो जिसके जिसके हृदय में जो होता है वैसे ही वो सर्वत्र प्रकृति को देखता है। कोई बेचारा कंगाल है और उससे कहो दान करो दान करो, तो उसके पास खुद ही संपत्ति नहीं है तो वो क्या दान करेगा, और कहते रहो उससे कि दान करो, तो जिसके पास जो होगा वह बांटेगा। जिसके पास घृणा है वो घृणा बांटेगा, जिसके पास प्रेम है वो प्रेम बांटेगा, जिसके पास आनंद की संपत्ति ही नहीं है बेचारा दिन रात दुखी रहता है और उससे कहो आनंद बांटो, बड़े बड़े पोस्टर लगा के, और वो क्या बोलते हैं होर्डिंग्स, और लगा दो आनंद बांटो। अब ये जीव तो बेचारा दुखी है, और लोग कहते हैं इस समय तो सबसे बड़ा दुख है, इस समय जितना दुख है उतना कभी भारत में पड़ा ही नहीं, बड़ा भारी दुख है, अब वो क्या आनंद बांटे। तो आनंद विद्या, ब्रह्म विद्या, ज्ञान उसके पास नहीं है तो क्या बांटेगा। तो ऐसे ही कहा कि ईश्वर हमारे पास ही नहीं है तो हम बाहर कहां ईश्वर को देखेंगे। इसलिए यमराज ने कहा येन रूपम रसम गंधम, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो सब तुम देख रहे हो उसके पीछे वह ईश्वर बैठा है, वही इन इंद्रियों के झरोखों से झांकता है, वही अंतःकरण की वृत्ति को प्रकाशित करता है, वह ईश्वर है, वह सच्चित आनंद स्वरूप है, वह सच्चित आनंद स्वरूप है, वह देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद सामान्य के अत्यंता भाव से उपलक्षित है और उसमें कोई भेद नहीं, सजाती विजाति स्वगत भेद उसमें नहीं है, वो भेद रहित है, वह अभेद तत्व है। तो कहा महाराज जी हमें इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है, ईश्वर अभी है यही है, ये सुनते रहते हैं लेकिन इसकी कोई अनुभूति हमें नहीं होती। महाराज जी ने कहा कि आपने ईश्वर के बारे में एक ख्याल गढ़ लिया है, एक ख्याल बना लिया और आपने जो ख्याल गढ़ा है उसमें आपने न वेद की सलाह ली, न शास्त्र की सलाह ली, न उपनिषद की सलाह ली, न गीता की सलाह ली, किसी की सलाह नहीं ली, हाँ नेताओं की सलाह ले ली। नेता लोग आजकल सलाह देते हैं, वो सर्वगुण संपन्न है, हरफन मौला, तो अध्यात्म का विचार होगा वहां भी वो पहुंचेंगे और कहेंगे ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। अरे एक है किस प्रकार से वह एक है, इसका निरूपण तो जब आप तत्व विचार करेंगे तब समझ में आएगा। तो ईश्वर एक है, सब रास्ते वहीं पहुंचा रहे हैं, ऊपर एक ईश्वर के प्रतीक बना देंगे और बहुत सारे रास्ते और कहेंगे वहीं पहुंचा रहे हैं और कहीं नहीं पहुंचता कोई, कहा सब रास्ते वही, वो उपासना की पद्धतियां हैं पृथक पृथक, वहां तत्व विचार है नहीं तो कैसे, वहां जहां मोक्ष का विचार नहीं, तत्व का विचार नहीं, अधिक से अधिक तो हमारा जो पैगंबर है, जो हमारा दूत है, ईश्वर का दूत है, पुत्र है, वो हमें कहां तक पहुंचा देगा, तो कहा स्वर्ग नरक तक पहुंचाएगा, वो भी उसकी मर्जी हुई तो, बहिष्ट दोजक तक और हेवन और हेल वो वहां तक पहुंचाएगा। तो ऐसा ऐसे जो संकीर्ण विचारधारा वाले हैं वो क्या ईश्वर को जानेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि आप शास्त्र वेद शास्त्र उपनिषद गीता के अनुसार ईश्वर का विचार करें, उसको उसके उसको आप नहीं मानते हैं इसलिए ईश्वर के लिए आप कुछ जानते नहीं। यहाँ तक कि भागवत में भी सगुण साकार का जो ध्यान बताते हैं, अब सगुण साकार मानते हैं ईश्वर को, तो सगुण साकार मानिए वह ध्यान के लिए, ध्यानिक ब्रह्म एक होता है ध्येय ब्रह्म, और ज्ञेय ब्रह्म जिसे वेद कहते हैं, जिसे जानना है तत्वतः क्या है परमात्मा ईश्वर, उसकी बात कुछ और होती है। यह आपको हम सगुण साकार की महत्ता घटाने के लिए नहीं कह रहे, किंतु इस तत्व ज्ञान की महत्ता बताने के लिए कह रहे। तो कहीं चतुर्भुज भगवान है और उपनिषद में तो अवतार वाले भगवान का नाम ही नहीं है, उपनिषद में नाम नहीं, नेदम यदिदम उपासते, इदम इदम करके जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वह ब्रह्म नहीं है, ऐसे निषेध करती हैं श्रुतियां। कल आपको नीति नीति की बात कल या परसों सुनाई थी, तो आपका विश्वास कहाँ बैठा है, विश्वास की कीमत होती है। और ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि हम ऐसे ईश्वर का विश्वास करते हैं, ईसाई मत वाले गॉड का विश्वास करते हैं या अल्लाह का विश्वास करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसकी भी कीमत है। आप अपने जिस इष्ट को जिस पद्धति पर आप विश्वास करते हैं उसके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति होगी, लेकिन वहां महाविश्वास और महातन्मयता चाहिए, ये महाराज जी के शब्द बोल रहे हैं भला, अर्थात बहुत बड़ी कीमत, उसकी इतनी कीमत होती है लेकिन उसमें बल लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि वह ध्येय ब्रह्म होगा। और यहां जिस तत्व का वर्णन होता है वह सरल है, सत्य हमेशा सरल होता है। आप एक दिन नियम लीजिए कि आज हम पूरे दिन झूठ बोलेंगे, मुश्किल हो जाएगी, लेकिन एक दिन नियम लीजिए कि आज हम पूरे दिन सत्य बोलेंगे, पालन कर सकते हैं, क्योंकि सत्य सरल है, सत्य सरल होता है। तो आप जब दुनिया में झूठ भी बोलते हैं तो सामने सत्य को रखकर अर्थात दूसरे को यह दिखाते कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, यह दिखाकर और झूठ बोलते हैं। और जिस दिन आपने झूठ बोलने का नियम लिया और घर में गए तो आप कहेंगे मुझे भूख नहीं लगी है, तो पत्नी कहेगी तो हवा खाओ। अब झूठी बोल रहा है, झूठी झूठ बोल रहा है पूरे दिन और लगी है भूख। अब बोल देंगे कि भूख लगी है तो झूठ हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो कभी भी मनुष्य इतना झूठ बोल ही नहीं सकता, इसलिए कलयुग में भी जो सत्य का चरण है वो विद्यमान रहता है, क्योंकि इतना झूठ मनुष्य बोल ही नहीं सकता। व्यवहार में भी वो सत्य उसको बोलना ही चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको बल लगाना पड़ता है, बड़ी तन्मयता चाहिए, बड़ा भगवत विश्वास चाहिए, सुतीक्ष्णादि की भक्ति, जितने भी भक्त हुए तुलसीदास जी की भक्ति, उस सब में उनकी उनका बल है। और साथ साथ में वेद शास्त्रों के साथ वो जुड़े रहते हैं, इसलिए जीवन में निर्भरता आती है। जब आप वेद शास्त्र के साथ नहीं जुड़ते हैं और केवल अपना मनमानी अपने ढंग का ईश्वर बनाते हैं, तो आपको ऋषि मुनियों की जो संपत्ति है उसकी प्राप्ति नहीं होती और कहीं न कहीं आप डगमगा जाते हैं, आप वहां पर डगमगा जाते हैं। तो हम जैसे ईश्वर को मानते हैं वैसे ही ईश्वर को आप जानते हैं, और अपने अनुभव से आप नहीं मानते हैं, आप वेद शास्त्र के अनुभव से नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, अपने अनुभव से आप मानने जाते हैं, तो आप 5000 वर्ष पूर्व जो हुए थे ईश्वर उसको आप मानने लगेंगे, तब काल की दूरी हो जाएगी और देश की भी दूरी हो जाएगी, रूप की। इसको बहुत खोल खोल के महाराज जी ने समझाया, हम आपको संक्षेप में समझा रहे हैं क्योंकि समय हो जाता है। और कहा कि रूप की भी अन्यता हो जाएगी, वो कोई और रूप है, हम कोई और रूप है। अब जब तक हम तत्वतः ईश्वर को नहीं देख लेंगे, तो जब ईश्वर हमारे सामने किसी और रूप में आ जाएगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों को कथा सुनी है कि सेठ जी को भगवान ने दर्शन दिए कि मैं कल आऊंगा, और वो कोढ़ी के रूप में आए, वो वृद्धा के रूप में आए, वो गरीब के रूप में आए, और सेठ जी ने उन्हें नकार दिया। ये कथाएं आपने सुन रखी है ना, हाँ, इसलिए विस्तार नहीं कर रहे। तो सेठ जी ने बड़ी सुंदर ढंग से समझाई जाती हैं वो कथाएं, तो कहा कि वो उनको नकार दिया। फिर सेठ जी ने कहा कि तुम तो यशोदा मैया से ही झूठ नहीं बोलते थे, मुझसे भी झूठ बोले कि मैं आऊंगा और आए नहीं। तो भगवान की वाणी आई, अरे सेठ, मैं तेरे पास 3-3 बार आया पर तूने मुझे नकार दिया। मैंने कब कहा था कि मैं मुरली बजाते हुए, पीताम्बर धारी वंशी बजाते हुए आऊंगा, मैं तो सभी रूपों में हूँ। तो आप तो उसको नकार देते हैं, वो ईश्वर की जो सर्व व्यापकता है उसको हम नकार देते हैं, काल बिठा लेते हैं बीच में, देश बिठा लेते हैं बीच में, और अन्यता अर्थात रूप बिठा लेते हैं बीच में। तो ऐसा जो ईश्वर होगा जिसमें हम देश काल और रूप को महत्व देकर रखेंगे, तो आएगा और चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं भगवान प्रकट हुए और भगवान अंतर्धान हो गए। तो वो क्या होता है, वो इस प्रकार आकर और चले जाते हैं, और आपके हृदय में एक वेदना, एक पीड़ा, एक जिज्ञासा डाल के जाते हैं, जिसको रामानुजाचार्य व्याकुलता कहते हैं और वल्लभाचार्य निस्साधनता कहते हैं, उसी को भगवान शंकराचार्य जिज्ञासा कहते हैं। तो जिज्ञासा की एक वेदना डाल के जाएगा, इसलिए निसदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। अब पावस ऋतु को देखो, तो पावस ऋतु को नहीं, ईश्वर को देखो, उस परमात्मा को देखो जो सदैव आपके साथ है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जपते श्याम सुधारे सिधारे। तो यदि ईश्वर अभी नहीं है तो वह कहाँ है, कब है? अर्थात हमने उसको काट दिया काल में, देश में हमने उसे परिच्छिन्न कर दिया, है ना? अभी नहीं है तो वो आकर जा चुका है क्या? आकर जा चुका है तो हम स्वयं ही तो उसको नकार रहे हैं। तो तत्वतः हम ईश्वर को नहीं स्वीकार। अकाट्य अबाध्य यदि ईश्वर आपको चाहिए तो वह जब आपकी अंतरात्मा से एक होकर रहेगा परमात्मा, तभी वह अकाट्य अबाध्य ईश्वर होगा, तब वह परमात्मा सिद्ध हो जाएगा। यहां नहीं है, हमसे दूर है, अभी नहीं है, बाद में कभी मिलेगा। इस रूप में जो इतने विभिन्न रूप है, इस रूप में नहीं है तो किसी और रूप में मिलेगा ईश्वर। जब हम ऐसे मानते हैं तो शास्त्र जब कह रहे हैं कि वह अभिन्न निमित्त उपादान कारण है और एकमात्र केवल इस वैदिक संस्कृति में ही उसको अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना गया है, वह निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी, उस सिद्धांत को हमने काट दिया। हमने ईश्वर को हम स्वयं अपने जीवन से नकार देते हैं। वो कथा आप जानते हैं कि एक को दिया कपड़े की चिड़िया दी और कहा इसका सिर वहां मरोड़ के लाओ जहां कोई नहीं देख रहा। तो जो सत्शिष्य था उसने कहा मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र देख रहा था, सर्वत्र देख रहा था। तो इसलिए हम ईश्वर को अपने जीवन से नकार देते हैं। जिस प्रकार से हम स्वीकृति भी देते हैं कि ईश्वर ऐसा है, सर्वव्यापी है, ओमनीशियंट, ओमनीपोटेंट, लेकिन उसको भी ओमनीप्रेजेंट, उसको भी हम नकार देते हैं जीवन व्यवहार में। हम उसको स्वीकार उस प्रकार से नहीं करते हैं। कहीं भी ईश्वर चैतन्य की स्वीकृति आपको आगे बढ़ाती है, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के अनुसार भी, धर्म मजहब के अनुसार भी, यदि आप ईश्वर को स्वीकृति देते हैं तो वह आपके चित्त को शीतल करेगी, आपकी उग्रता का विनाश करेगी। इसलिए ये उपनिषद, ये गीता, ये वेद शास्त्र, ये सत संप्रदाय के जो आचार्य हैं, इनके अनुभव से आपको ईश्वर के स्वरूप का निश्चय करना चाहिए, इसके अनुसार ईश्वर का निश्चय करना चाहिए। तो महाराज जी सुनाते कि एक महात्मा थे, वो बैठ जाते थे और सब स्टेशनों के नाम लेते थे, जबलपुर, कटनी, झांसी, बीना, इलाहाबाद, मुगल सराय, काशी, वाराणसी, मुगल सराय, ऐसे करते हुए और जाते थे कलकत्ते तक, फिर लौट के आते। तो किसी ने बोला महाराज ये सब क्या करते रहते हो, स्टेशनों के नाम लेते रहते हो, महाराज भगवान का नाम लिया करो। लोग तो ज्ञानी बहुत है इस भारतवर्ष में, ज्ञानियों की कमी और सलाहकारों की कमी नहीं। तो कहा महाराज आप भगवान का नाम लिया करो, ये सब क्या बोलते रहते हो। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, सब ब्रह्म है, भगवान के ही नाम लेता हूं और तू भी ब्रह्म है, तू क्यों नहीं जानता कि सर्व स्थानों में वो व्याप्त है। देखो काल में व्याप्त है, आकृतियों में व्याप्त है, तो सब स्थानों में वो व्याप्त है, तो सारे जो स्टेशन के नाम है वो ब्रह्म के नाम है, वो परमात्मा के नाम सबको। इस तरह से हमारे महापुरुषों ने, महात्माओं ने यहाँ इतने तीर्थ बनाए, जितने दुनिया में कहीं नहीं है उतने तीर्थ भारतवर्ष में बने, अखंड भारतवर्ष में, क्योंकि सर्वत्र वो ब्रह्म को देखते हैं, इसमें भी परमात्मा, इसमें भी परमात्मा। तो जो सर्वत्र ब्रह्म को देखते हैं उन्होंने इस प्रकार से देखा, ईशानम भूत भव्यस्य, भूत और भव्य का वह ईशन करता है, शासन करता है, और न ततो विजुगुप्सते, और तब वह जुगुप्सा को प्राप्त नहीं होता है। जुगुप्सा का एक अर्थ घृणा भी होता है, जुगुप्सा का एक अर्थ गुप्त रखने की इच्छा, यह भी होता है। आप किसी से कुछ छिपाते हैं, अब सब अपनी आत्मा है तो किससे क्या छुपाओगे, किससे क्या छुपाओगे, सब अपनी ही आत्मा है। तो ततो ना विजुगुप्सते, तो ना विजुगुप्सते वह उसको, एक तो यहाँ पर अर्थ लिया रक्षा करने की इच्छा भाष्यकार भगवान ने, लेकिन जुगुप्सा विशेष रूप से जुगुप्सा नहीं, तो जुगुप्सा में एक गुप्त रखने की इच्छा और एक घृणा, अर्थात दूसरे से किसी से वह घृणा नहीं करता। ये श्रुतियों के मंत्र हैं भला, ये प्रमाण है, ये प्रामाणिक है। कल प्रमाण की चर्चा आपको सुना चुके हैं, रोज तो सब बात नहीं सुनाई जा सकती, इसलिए उसको आप ध्यान रखिए। तो ये ततो न विजुगुप्सते, वो मैं मेरा करके जब हम ज्ञान को पृथक करते हैं, ये मैं है, ये मेरा रूप, जितना प्रत्यय ज्ञान होता है, वृत्ति ज्ञान होता है, वह सब क्या है, वह अध्यास है, वह विशुद्ध ज्ञान नहीं है, और वही अविद्या है। और जिसकी ये अविद्या गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह से, उनके उपदेश से, उनकी कृपा से निवृत्त हुई है, तो वह जुगुप्सा को प्राप्त नहीं होता। जीवत्व एक अध्यास है और अध्यास ही अविद्या है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से यह अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या क्या है? अविद्यायाम अविद्यात्वम इदमेव ही लक्षणम। क्या लक्षण है भाई? तो सहते न विचारम सा, वह विचार को सहन नहीं करती है। यदि आप विचार करने लगे, ब्रह्म विचार करने लगे, तो भागती नजर आती है। न वह जड़ में है न चेतन में है, बीच में ही ऐसे एक कल्पित खड़ी हुई है। तो विचार को विचारा सहिष्णुत्वम अविद्या लक्षणम, विचार से को लेकर असहिष्णुता, ये अविद्या का, अज्ञान का लक्षण है। कहा कि हमें अज्ञान है, किसका? रशियन भाषा का। चलो एक रशियन टीचर को बुलाया, भाषा की टीचर को, और वो आपको सिखाने लगा, तो आप सीखने लगे तो अज्ञान चला गया। वो अनादि हो सकता है किंतु अनंत नहीं होता। अभी आप सुन रहे थे कि जो देश की अनादिता और अनंतता है, देश की अनंतता, वो हमारी बुद्धि में नहीं आती। बहुत सुंदर बात आप सुन रहे थे, महाराज जी बोल रहे हैं। तो कहा कि वो हमारी बुद्धि में नहीं आती, और काल कब शुरू हुआ, काल का अंत कब होगा, यह भी हमारी बुद्धि में नहीं आता। अगर कहें कि उस समय, तो उसके पहले क्या था, प्रश्न पूछ लेंगे। और ऐसे अनंत है काल, तो उसके अनंत नहीं, उसके अंत में क्या होगा, तो कहा अंत में क्या होगा, अंत में ऐसा ऐसा हो जाएगा। उसके बाद वो कहानियों में कह देते हैं कि अंत में वो राजा रानी बड़े सुखी होकर रहे, आनंद से उनका विवाह हो गया और सुखी होकर रहे। तो फिर कुछ पूछेंगे, फिर उसके बाद बुद्धि चलती है मनुष्य की, तो उसके वो काल की अनंतता हमारी बुद्धि में नहीं आती। ये बुद्धि की सीमाएं हैं, और इसलिए बुद्धि से परे है परमात्मा, इसको समझना पड़ता है। तो काल की अनादि अनंतता नित्यता हमारी बुद्धि में नहीं आती। देश की संपूर्ण व्यापकता, इसका पूरा ओर छोर हमारी बुद्धि में नहीं आता। तो ये क्या हुआ? ये परोक्ष हुए। तो परोक्ष अनादि अनंतता, देश काल आदि की कार्य कारणता की, वस्तु द्रव्य में कार्य कारणता ले लेना, यह परोक्ष होता है। और इसलिए अविद्या अज्ञान परोक्ष होता है, जहां से हम लोग प्रारंभ किए थे। और ज्ञान साक्षात अपरोक्ष होता है। तो स्वरूप का कभी अभाव नहीं है, उपाधि का अभाव है, और उपाधि के अभाव को हम आरोपित करते हैं अपने स्वरूप पर। उपाधि का अभाव होता है सुषुप्ति में, गहरी नींद में, और उस गहरी नींद में उपाधि, जो मन बुद्धि आदि उपाधि, अंतःकरण उपाधि, इंद्रियां उपाधि, उसको हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो अवस्थाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है, वह आता जाता नहीं है। और जब भेदक ज्ञान होता है तो वह जीव कहलाता है, भेदक ज्ञान जीव को होता है। और अभेद अनुभूति किसको होती है? अभेद अनुभूति किसको होती है? यह बनती नहीं है बात, तो उसमें क्या बोलता है, भेद ज्ञान की निवृत्ति से उपलक्षित होती है अभेद अनुभूति। तो ब्रह्म जो अधिष्ठान है उसमें ये वृत्ति कार्य के रूप में कभी फुरफुराती है, भेद वृत्ति कभी आती है जाती है, और वह अखंड अद्वितीय ज्ञान वह चैतन्य ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है, वह आपका स्वरूप है। एतद् वै तत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।